आन्या ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। अन्वय ने उसकी ओर देखा तक नहीं और बेड से उतरने लगा, पर आन्या ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। फिर उसे बड़े प्यार से देखते हुए बोली, जब तक सो रही थी तब तक इतने पास थे मेरे, और मेरे जागते ही मुझसे दूर भागने लगे। इतनी बेरुखी क्यों दिखाते हो मुझे? जब प्यार है तो जाहिर क्यों नहीं करते? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुम्हें, तुम भी करते हो मुझसे मोहब्बत, फिर मानते क्यों नहीं? कितना तरसाओगे मुझे अपने प्यार के लिए? जब दिल में मेरे लिए प्यार से दरिया है, फिर उसकी एक एक बूंद के लिए मुझे क्यों तड़पा रहे हो? मुझे तुम्हारा होना है अन्वय। जब मोहब्बत दोनों तरफ है, फिर हमारे बीच ये दूरियां क्यों हैं? हाथ छोड़ो मेरा आन्या, अन्वय ने अपने जज्बातों को अपने गुस्से के पीछे छुपाते हुए कहा। आन्या अब उठकर बैठ गई और उसके गाल पर अपनी हथेली रखकर उसके चेहरे को अपनी ओर मोड़ते हुए बोली, कब तक अपने जज्बातों को अपने गुस्से के पीछे छुपाओगे? कभी तो अपने गुस्से को छोड़कर अपने प्यार की बारिश किया करो मुझ पर। जल रही हूं मैं इन दूरियों की तपिश में, अपने प्यार की कुछ बूंदों को बरसा दो मेरे ऊपर, शायद कुछ कम हो जाए। तड़प रही हूं तुम्हारे प्यार को महसूस करने के लिए, और कितना तड़पाओगे मुझे? तुम्हारे तरह पत्थर दिल नहीं हूं मैं, ज्यादा वक्त तक तुम्हारी बेरुखी नहीं सह पाऊंगी। इससे पहले कि मैं टूटकर बिखर जाऊं, समेट लो मुझे अपनी बाहों में। आन्या अपनी नम आंखों से अन्वय को देख रही थी, वहीं अन्वय उससे निगाहें मिलाने से बच रहा था। पर भला कब तक अपने जज्बातों को काबू कर पाता वो? आन्या की बातें उसे पिघलने पर मजबूर कर रही थीं। कितने आस से आन्या उसे देख रही थी, कब तक अछूता रह पाता इन एहसासों से, कब तक अनजान बन पाता उसके लिए अपनी फीलिंग से। पर इस वक्त वो बुरी तरह उलझा हुआ था। उसने आन्या की कलाई से अपनी कलाई छुड़ा दी, और जैसे ही उतरने लगा, आन्या ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ पर अपना सर रखते हुए बोली, नहीं, इस बार मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगी। तुम खुद आए हो मेरे करीब, अब तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं है। बस यही अन्वय का सब्र जवाब दे गया। उसने आन्या के हाथ हटाए, आन्या की आंखें छलक आईं। अन्वय उसकी ओर पलट गया और उसके गाल पर हथेली रखते हुए उसके चेहरे की ओर झुकने लगा। आन्या नम आंखों से एकटक उसे देख रही थी, दोनों की नाक एक दूसरे से छू रही थी। अन्वय आन्या के लबों को अपने लबों से छूने ही वाला था कि बाहर से जूली की आवाज़ आई, मिस आन्या, आप उठ गई हैं? अन्वय के कानों में जैसे ही उसकी आवाज़ पड़ी, वो एकदम से होश में लौट आया, और आन्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहां से गायब हो गया। आन्या कुछ पल स्तब्ध सी बैठी रही, फिर एक बार फिर बाहर से जूली की आवाज़ आई, मिस आन्या, आप ठीक हैं? आवाज़ सुनकर आन्या होश में लौटी और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ, मैं नहा रही हूँ, कुछ देर में दरवाज़ा खोलूंगी। उसने झूठ कहा, पर जूली उसके झूठ को सच मान बैठी। आन्या के कपड़े लिए और नहाने चली गई। अन्वय सीधे अपने कमरे में पहुंचा। आज उसे भी बहुत ज़रूरी काम था, तो वो फ्रेश होकर महल की प्रयोगशाला में चला आया। जीवन उसके वहां पहुंचते ही उसके सामने हाजिर हो गया। अन्वय ने इर्द गिर्द निगाहें घुमाते हुए कहा, कहाँ तक पहुंचा है काम, और कितना वक्त लगेगा उस औषधि को बनने में? हमारे पास और वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी हमें उनके महल पर हमला करके सम्राट को उनके कैद से आज़ाद करवाना है। आज उसका परीक्षण किया जाना है, अगर परिणाम हमारी इच्छा मुताबिक आए तो आज ही सबको ये औषधि दे दी जाएगी। उसके बाद किसी भी औषधि का उन पर कोई असर नहीं होगा, उनकी शक्तियों को कोई कम नहीं कर पाएगा। जो घोल विक्रांत तैयार करवा रहा है उसका तोड़ ही औषधि है, जिससे हमारे वैम्पायर्स की शक्तियाँ पहले से 3 गुनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जीवन ने गंभीरता से जवाब दिया। अन्वय ने हाँ में सर हिला दिया और वहाँ का काम देखने लगा। दूसरी तरफ आन्या आज बहुत उदास थी और वो बाहर गार्डन में अकेली ही बैठी थी। उसने जूली को ये कहकर वापस भेज दिया था कि कुछ देर उसे अकेले रहना है। आन्या अन्वय के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक ही वहाँ तेज़ हवाएं चलने लगी, जिससे आन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद हवाएं थम गईं तो आन्या ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी निगाहें सामने पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और मुंह से धीरे से निकला, निहाल। उसके ठीक सामने निहाल खड़ा था, जो उसे बेहद गुस्से से देख रहा था। अगले ही पल उसकी आंखें एकदम नीली हो गईं और मुंह के किनारे से दांत बाहर आ गए, तो आन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह से आवाज़ बाहर नहीं निकल सकी। वो इस वक्त बेहद भयंकर लग रहा था। आन्या कुछ सेकंड तक उसे हैरानी से देखती रही और उसकी आंखों में देखते हुए अगले ही पल निढाल सी जमीन पर जा गिरी। इसके साथ ही निहाल के लबों पर तिरछी मुस्कान फैल गई और वो आन्या के पास आकर बैठ गया। फिर उसके चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें उस अन्वय से दूर रखने की इतनी कोशिशें की, इतना प्यार किया तुम्हें, पर तुम्हें प्यार हुआ तो उस अन्वय से। वैसे तो मुझे ना किसी के बदले में कोई दिलचस्पी थी, ना ही अन्वय से मेरी कोई दुश्मनी थी, पर अब क्योंकि तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर उसको चुना है, इसलिए अब उसे मरना ही होगा। मरना तो अब तुझे भी पड़ेगा, पर उससे पहले मैं तुझे अपना बनाऊंगा। उसके बाद तेरे यार के सामने तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तड़पेगा वो तेरे लिए, पर तुझे बचा नहीं पाएगा, और यही असली शिकस्त होगी उसकी। वो ये सब कह ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी। जो करना हो करना, पर पहले इसे लेकर जाओ यहां से। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे सारे सपने सपने ही बनकर रह जाएंगे। आवाज सुनकर निहाल ने अपनी निगाहें घुमाई तो कुछ ही दूरी पर मोहिनी खड़ी थी। निहाल उसे देखकर मुस्कुराया और कल रात की यादों में खो गया।